जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 42 पर 26 दिसंबर 2015 को इस्कॉन नई दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश में दिया गया।
गोपी जन बाला भाला धारे भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण
प्रभु नमः।
सदृश
प्रकट होता है।
धन्यवाद मेरे विषय बोली। ब्राह्मण संस्कृति में
ब्राह्मण संस्कृति में
शाश्वत रूप से
बनाए रखा जाता है
क्योंकि वेदों के आदेशों को
श्रद्धा
तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान वो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुख भली भांति प्रतिबिंबित होता है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में आहुतियां डालने से अधिक कारी है। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण भोजन बनाना यज्ञों के करने से श्रेयस्कर है और इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न हुए हैं किंतु उनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से ही महाराज पृथु ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि की भांति बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय की भली भांति जानकारी होनी चाहिए जैसा कि भगवद गीता 15:15 में कहा गया है वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या। वैदिक निर्णय या वेदांत ज्ञान कृष्ण ज्ञान है ये तथ्य है। जिस रूप में श्री कृष्ण है उनके जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है जैसा कि भगवद गीता में उल्लिखित है जन्म कर्म च एवं जो वेद तत्वता। जो ब्राह्मण श्री कृष्ण को ठीक तरह जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी पुष्टि भी भगवद गीता 14:26 में हुई है। माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणां समकीर्तयेताम् ब्रह्म भूयाहि कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है और किसी स्थिति में उससे डिगता नहीं वो अभी त्रिगुणमय माया का अवलंबन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः भगवान कृष्ण का भक्त वास्तव में एक पूर्ण ब्राह्मण है। उसकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह पद जीवन के चरण दोषों से मुक्त होता है। ये दोष हैं त्रुटि करना मोहग्रस्त होना धोखा देना तथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होना। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है क्योंकि वह कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में बोलता है। क्योंकि वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वो चारों दोषों से रहित होता है। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन्हीं का चिंतन करे उन्हीं का भक्त बने उन्हीं को नमस्कार और उन्हीं की पूजा करे और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। ये भक्ति कर्म दिव्य है और चारों दोषों से रहित हैं। अतः जो भी भगवान कृष्ण का एक कृष्ण भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार श्री कृष्ण के आदेशों के ही अनुसार करता है वह गिरिजम होता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं जो श्रीमद् भागवत के अनुसार इन रूपों में प्रकट होता है। निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान ये ज्ञान सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। अतः मनुष्य को चाहिए वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन के लिए करे वरन इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों को भगवान तथा वेदों के ही शब्दों में श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे। इस श्लोक का मंगल या शुभ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री श्रीधर स्वामी ने उद्धरण दिया है कि जो उत्तम है उसे करना और जो उत्तम ना हो उसका त्याग करना मंगल या शुभ है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति करने के अनुकूल हो उसे स्वीकार करना और उसके त्यागने का अर्थ है कि भक्ति करने में जो प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करना, हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए चार निषिद्ध हों, अवैध विषयी जीवन, मादक द्रव्य सेवन, युद्ध क्रीड़ा तथा मांसाहार का बहिष्कार करते हैं और प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। यदि कोई भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र परम उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अतः जो प्रारंभ से ही उपर्युक्त विधि से वैदिक नियमों का पालन करता है वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देख सकता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित अपने मुख को देखा जा सकता है। अतः निष्कर्ष ये निकला कि कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वो जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, अपितु उसमें शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त गुण होने चाहिए और उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वो अंततः पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाता है और ये समझ सकता है कि कृष्ण क्या है। ब्रह्म संहिता 5:38 में इसका निम्न लिखित वर्णन मिलता है कि भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखता है। भक्ति विरोचन संता हृदय श्याम सुंदर चंद्र गुण स्वरूप गोविंद माने पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण का सिद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति की यह परिपूर्ण अवस्था है।
यद्ब्रह्म नित्यं रजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगला मौन संयमे समाधिं विवृति हृदय दृष्टे इत्येदं दर्शयिवावभासते। तो इस श्लोक का उच्चारण प्रीति महाराज कर रहे हैं। प्रीति महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे और ये उपदेश वो दे रहे हैं अपनी प्रजा को। इस अध्याय में आप पढ़ते हो पृथ्वीराज का उपदेश जो कि उन्होंने अपनी प्रजा को दिया और इस प्रकार का व्यवहार उदाहरण हर नेता को दिखाना चाहिए। पिछले पृथ्वीराज ने महाराज का स्वागत किया, उनसे पूछा क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। तो प्रीति महाराज इस अध्याय में प्रजा को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, भक्तियों की विधियों का पालन करना चाहिए, यही है जीवन की सफलता। पिछले 6 श्लोकों में प्रीति महाराज वैष्णव और ब्राह्मण का गुणगान कर रहे हैं। पृथ्वीराज ने पिछले श्लोकों में ये स्थापित किया है कि वैष्णव और ब्राह्मणों को खास आदर देना चाहिए। और वैष्णव ब्राह्मण होते हैं होना चाहिए गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। भगवान ने भी स्वयं उदाहरण दिया, जब नारदी आए उन्होंने दिखाया वर्ग में कैसे उनका स्वागत करना चाहिए। जब सुदामा ब्राह्मण आए थे भगवान के महल में तो भगवान ने अपने पृष्ठ में बिठा कर उनके चरण धोए। और कल के श्लोक में ब्राह्मण जी तात्पर्य में अद्वैताचार्य को उदाहरण देते हैं। अद्वैताचार्य सालाना श्रद्धा किया, प्रबल किया था और उन्होंने भोजन सबसे पहले खिलाया किसे?
हरिदास
हरिदास ने कहा कि आपका स्थान समाज में ब्राह्मण समाज में समाप्त हो जाएगा अगर आप मुझे भोजन खिलाओगे, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है समाज में। अद्वैताचार्य ने कहा आपको खिलाना लाखों ब्राह्मणों को खिलाने से ज्यादा उत्तम है क्योंकि वो ऊंची कोटि के भक्त है। तो प्रीतु महाराज आज के श्लोक में क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश जैसे मैंने कहा पिछले 5 श्लोकों से आ रहा है और आगे 3 श्लोकों तक चलेगा जिसमें ब्राह्मणों और वैष्णव का वो गुणगान कर रहे हैं। आज के श्लोक में खास करके ये स्थापित किया जा रहा है कि हमें ब्राह्मण और वैष्णव बनना चाहिए। ब्राह्मण की पहचान क्या है? ब्राह्मण को हम जन्म के आधार पर नहीं पहचानते। हमारी संप्रदाय में हम ये स्वीकार नहीं करते कि अगर किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। पापा जी उदाहरण देते थे बहुत ही समाज में भी अगर कोई जज का वो बेटा हो तो ये थोड़ी खुद ही कोई जज बन जाएगा, तालीम होगी तो बोले। तो भगवान गीता के 14 अध्याय में क्या कहते हैं? चतुर्वर्ण माया शेषम गुणा कर्मा विभाग। गुणों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है। तो प्रीतम राज क्या कहें, ब्राह्मणिकल संस्कृति में ब्राह्मण की आध्यात्मिक स्थिति पहचानी जाती है जब वो इन गुणों को अनुकूल करे। आगे पृथ्वीराज ने गुणों का वर्णन किया है। भक्ति सिद्धांत सार्वजनिक ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने स्पष्ट इस विषय की स्थापना की। एक समय कलकत्ता में ब्राह्मण सभा का सम्मेलन हो रहा था, यहाँ के उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर को निमंत्रण दिया था प्रवचन देने के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को भेजा उस सभा में। भक्ति सिद्धांत जी ने पहले तो अपना प्रवचन आरंभ किया, ब्राह्मणों की आवश्यकता और ब्राह्मणों के गुणों का ब्राह्मण का गुणगान करने के माध्यम से। और उसके पश्चात भक्ति सिद्धांत जी ने ये कहा कि ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुणों के आधार पर और जन्म के आधार पर नहीं, जो ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा। इतना था कि ब्राह्मण ने योजना बनाई थी भक्ति सिद्धांत जी को नुकसान पहुंचाने के। तो हमारे संप्रदाय में वही स्वीकार किया जाता है जो कि शास्त्रों में प्रभुपाद जी जब विदेशी भक्तों के साथ भारत में लौटे थे, कईयों ने वृंदावन में कहा स्वामी ने हमारी संस्कृति नष्ट कर दी, क्या किया, नेचर को ब्राह्मण बना दिया। और एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा आपको चमत्कार दिखा सकते हो? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, कोई चमत्कार तो नहीं दिखा सकता, पर एक चमत्कार मैंने दिखाया। तो दूसरे व्यक्ति बड़ी जिज्ञासा थी क्या चमत्कार दिखाया है? मैंने हजारों वृक्षों को ब्राह्मण बना दिया जिनका जन्म हुआ था, जो जुड़े हुए थे गलत कामों में भक्ति की विधियों के पालन के माध्यम से ब्राह्मण हो गया। तो पृथ्वीराज कौन है? शक्त में शवर है, वैसे तो पृथ्वी का शासन कर रहे थे पर पृथ्वीराज से है शक्त विषय अवतार। अवतारों के कई विभाग हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, शक्त विषय अवतार, युग अवतार। जैसे कल हम लोगों ने क्रिसमस मनाई थी, हमने तो नहीं मनाई पर क्रिसमस का उत्सव था। तो प्रभु जी ने कहा था कि जीसस क्राइस्ट भी शक्त विषय अवतार है। तो ब्राह्मण को कैसे पहचाना जाता है? ब्राह्मण को कैसे पहचाना जाता है? ब्राह्मण में क्या गुण होने चाहिए? प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के साथ 2.5 पेज का पढ़ दिया है जिसमें एक ही विषय की स्थापना की जा रही है कि ब्राह्मण के क्या लक्षण होने चाहिए। तो यह इस श्लोक में पृथ्वीराज कह रहे हैं जो ब्राह्मण है उसे वैदिक शास्त्र की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, उसका जो आचरण है वैदिक शास्त्र की शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। वेदों में वैदिक शास्त्र की रचना किसने की है? परम भगवान ने की है। और वैदिक शास्त्र में कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, तो ब्राह्मण का एक गोल ये होना चाहिए कि उसे वैदिक शास्त्र की शिक्षा श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि वो कहे हाँ मान लेंगे, नहीं, श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। इस शिक्षा में कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं है, भगवान की शिक्षा में कोई कमी नहीं है, तो श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। आगे ब्राह्मण के जीवन में तपस्या का भाव होना चाहिए। आप शास्त्र पढ़ते हो बार बार इस विषय की चर्चा, तपस्या भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहा, यज्ञ दान तपस्या किसी हालत में मत त्यागो। आत्मज्ञानी व्यक्ति को भी त्यागना नहीं जाए, तो ब्राह्मण में तपस्या का भाव होना चाहिए। तपस्या के माध्यम से आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। ब्रह्मा जी तीसरे स्कंद में कहते हैं तपस्या परम ज्योति भगवतम भगवत, परम भगवान जो है उनके अनेक नामों में एक नाम है अधोक्षुजा। अधोक्षुजा का अर्थ है जिसे समझना बहुत कठिन है, पर तपस्या के माध्यम से आप उन्हें समझ सकते हो। भगवान विष्णुदेव की शिक्षा भगवतम के 5वें स्कंद में प्राप्त करते हो। भगवान विष्णुदेव भी भगवान के अवतार है और श्रीमद् भागवतम में भगवान के प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन किया जाता है। तो भगवान विष्णुदेव अपने पुत्र को उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते हुए क्या कहा, तपोदिव्य पुत्र का ये सत्व है, हे मेरे प्रिय पुत्र भगवान की खुशी के लिए तुम सब क्या करो, तपस्या का पालन करो। तो कई बार लोग पूछते हैं अगर हम तपस्या का पालन करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, तो ऋषभ भगवान क्या कह रहे हैं, सौख्यम वदन्तम, आपको असली सुख मिलेगा जो कि केवल बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। भौतिक समाज में अगर किसी कार्य के द्वारा सुख प्राप्ति हो तो धीमे धीमे कम होते जाता है। अगर भूख लग रही है पहली चपाती खाओगे तो थोड़ा पेट भरेगा, फिर आपका रिकॉर्ड नहीं। और आध्यात्मिक जीवन में जितने क्षण लगातार भगवान के हो गए उतने ज्यादा आनंद प्राप्त होगा, उतनी ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो भगवान ऋषभदेव जी ने पुत्रों से कहा, पुत्रों के माध्यम से हम सबको, कि तपस्या का पालन करो भगवान की खुशी के लिए। तपो दिव्यम, दिव्यम करते हैं भगवान की खुशी के लिए, और उसके बदले में क्या मिलेगा, आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो भगवान ऋषभदेव या प्रीति महाराज कह रहे हैं ब्राह्मण में सबसे पहले तो ये गुण होना चाहिए कि वैदिक शास्त्र का निर्णय उसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो क्या है वैदिक शास्त्र का निर्णय, गीता में भगवान क्या कहते हैं, वेदेश सर्वे वेदेयो वेदांते के वेद वेदेयो वचनम्, सारे वेदों से मैं जाना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने वेदों की रचना की है। वेद ज्ञान है सनातन ज्ञान, हम गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, और गीता का संदेश कितना बहुत पुराना है। भगवान ने ज्ञान दिया ना किसे, सूर्य के देवता भी बहुत स्वर्ण। तो ब्राह्मण को वैदिक शास्त्र का निर्णय श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, उसमें तपस्या का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि हम राम के ब्राह्मण बने, जेनो है हमारे पास, जैसे इसको समय भी ब्राह्मण दीक्षा लेने से देने से पहले परीक्षा दी जाती है, देखा जाता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसे था और आचरण कैसे, फिर उसे ब्राह्मण को दीक्षा दी जाती है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में नरधमनी कहते हैं स्वाभाविक व्यक्ति के तीन जन्म होते हैं। पहला जन्म है शुक्र जन्म, शुक्र का अर्थ है वीर्य सीमन, और ये जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मानव भी। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम हरि नाम दीक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे कहा जाता है समृद्ध जन्म। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें ब्राह्मण का दीक्षा मिलती है, जिसको कहा जाता है यज्ञ का दीक्षा। और दूसरे तीसरे जन्म के पश्चात आप योग्य बनते हो भगवान के आचार्य विग्रह की सेवा में जुड़ने के लिए। तो प्रीतु महाराज अपने इस श्लोकों के द्वारा वैष्णव और ब्राह्मणों के स्थिति को स्थापित कर रहे हैं। समाज में ब्राह्मणों का होना भी आवश्यक है। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, शब्द की तुलना की जाती है किसके साथ, पांव के साथ, वैश्यों की पेट के साथ, शूद्रों की पैरों के साथ। तो ब्राह्मण का होना समाज में आवश्यक है। तो ब्राह्मणों में गुण होने चाहिए जिनका वर्णन शास्त्र में है, जैसे कि गीता के 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। शमो नमो तमो सोचन शांति राजा वेवचा ज्ञान विज्ञान वास्तव ज्ञान ब्रह्म कर्म स्वभागन। ब्राह्मण है वो शांत रहता है, क्यों? क्योंकि जीवन में एक ही भाव रहता है कि मुझे भगवान की सेवा में जुड़ना है और किसी कार्य में नहीं। और ब्रह्मा जी आज के श्लोक के तात्पर्य में मंगलाचरण का वर्णन कर की व्याख्या करते हैं। मंगला शब्द के बीच में ब्रह्मा जी कहते हैं शुभ कार्य, और मंगला शब्द कारण क्या है, उन कार्यों को स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है और उन्हें त्याग करना जो भक्ति के लिए
प्रतिकूल है।
चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे। सनातन गोस्वामी एक समय समाज में बड़े ऊंचे स्थान में थे, एक मुसलमान राजा के शासन का राज्य का पूरा शासन कर रहे थे। उनकी रुचि थी महाप्रभु जी के साथ सेवा में जुड़ने के लिए, तो सरकारी नौकरी त्याग कर महाप्रभु के पास आए। उनके आने से पहले उनके भाई आ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमको शिक्षा दी किस प्रकार भगवान के शरणागत हो सकते हैं। और इस विषय में क्या कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे गुरु पर स्वामी इस विषय में कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसले लो। भक्ति के लिए क्या अनुकूल है इसका वर्णन रूपक गोस्वामी जी करते हैं उपदेश में। क्या वर्णन अनुकूल है, उत्साह प्रवर्तना संगति आगे सदवे सभी भक्ति प्रसन्न। हमें उत्साहित होना चाहिए भगवान की सेवा में, जो भी सेवा करे चाहे साधारण सेवा भी हो, हमें बड़े उत्साह से करना चाहिए। दृढ़ होकर भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, ये नहीं कि कोई समस्या आए थोड़ी दुर्घटना भी दे हम विचल हो जाए गए, नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं है। धैर्य तब तक हमारा प्रवर्तन, जो विधियाँ नियम भगवान ने दिए हैं और गुरु परंपरा दिए हैं उन्हीं का सूत्र अनुसार चलना। संगति आगे भौतिक वादियों की संगत उतना ही रखो जितना कि आवश्यक हो उससे अधिक नहीं। तो सर्व की संगत में रहो। संक्षेप में ये कार्य जो अनुकूल है और प्रतिकूल क्या है आवश्यक से अधिक प्रयास करना प्रजल्पा करते हैं उन कार्यों की चर्चा जिनका भगवान से कुछ समझ लिया प्रभा जी कहते हैं भगवत 24 घंटे भगवान के नामों का उच्चारण करना है। भगवान के नामों का उच्चारण करोगे तो फिर जलवा का समय नहीं होगा। तो मंगलम का अर्थ है उन कार्यों को स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है और उन्हें त्यागना जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो प्रीतु महाराज कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, ब्राह्मण को वैदिक शास्त्रों का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और श्रद्धा के साथ और उसे तपस्या का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं शरीर की क्या तपस्या है, वाणी की क्या तपस्या है, मन की क्या तपस्या है। शरीर की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं शरीर के माध्यम से क्या करो, भगवान का भगवान की सेवा। और इस विषय में हमारे समक्ष पृथ्वी महाराज का उदाहरण है कैसे उन्होंने सब अंगों का उपयोग किया भगवान की सेवा में जुड़ गए। अमरीश महाराज ने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर जाने पैदल जाने के लिए, हाथों का उपयोग किया भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, नेत्रों का उपयोग किया भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन देने के लिए, जीव का उपयोग किया भगवान का विग्रह करने के लिए। तो ये है एक कार्य शरीर का। दूसरी तपस्या शरीर की है ब्राह्मणों की सेवा करो, और ब्राह्मणों से अर्थ है जैसे हम कह चुके हैं शुद्ध ब्राह्मण, राम के ब्राह्मण नहीं, पैदायशी ब्राह्मण नहीं। अगर पैदायशी ब्राह्मण में गुण हो हाँ फिर हम उन्हें पूरा आदर देंगे। अगर व्यक्ति पैदाइशी ब्राह्मण है और गुण प्रकट नहीं हो रहे तो फिर नहीं दिया जाएगा। तो पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि तपस्या का पालन करो, तो तपस्या का पालन आवश्यक है। और जीव की क्या तपस्या है, जीव की एक तपस्या ये है कि जीव द्वारा भगवान का गुणगान करो, जलपा से बचो, जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, सच्चाई सच बोलो, जीव द्वारा सच बोलो और मिठास के साथ, और जीव द्वारा कृष्ण कथा करो। यह है जीव की तपस्या। जीव को आदत है प्रजल्पा करने की, इसलिए कहा गया तपस्या है प्रजल्पा की वजह कृष्ण कथा करो, जलता के बजे भगवान का गुणगान करो और सत्य का उच्चारण करो प्रेम के साथ। फिर मन की क्या तपस्या है, मन की तपस्या है मन द्वारा भगवान का स्मरण करो, मन मन भाव मन भक्त करो मन जाए मन नमस्कार मन भगवान श्री सत्य भगवान ने मन को वश में लाने पर इस विषय को बल दिया है कई स्थानों में। भगवद गीता के 6 अध्याय का विषय है ध्यान योग, जिसमें भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं मन को क्या करो, बंधु बनाओ शत्रु नहीं। मन बंधु जब बनता है तो मन द्वारा भगवान का चिंतन हो, ध्यान के विषय का चिंतन हो। आध्यात्मिक विषय के चिंतन कई उदाहरण है। एक उदाहरण है प्रहलाद महाराज का, जो कि सदा चिंता में रहते थे किस प्रकार पतितों का उद्धार होगा, सदा यही सोचते रहते थे किस प्रकार पतितों को बचाया जाए। ये भी एक उदाहरण है। तो मन की तपस्या है भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के आदेश का चिंतन करना। अर्जुन उदास थे जब उन्हें पता लगा कि भगवान राम प्रकट हो चुके हैं। अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, और भगवान की कृपा से उनके मित्र के सहयोग से सफलता प्राप्त की। उसके पश्चात अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया। जब गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा जैसे भगवान स्वयं वहां उपस्थित थे। ये है मन की तपस्या, मन द्वारा क्या करो, भगवान के आदेश का स्मरण करो। इस प्रकार की योजना बनाओ कि अंत में भगवान का स्मरण कर सको। अंतिम ये है जीवन की सफलता कि हम इस प्रकार की योजना बनाए कि हम सदा नारायण का स्मरण कर सके और मृत्यु के समय ज्ञान भगवान का स्मरण कर सके। तो जो ब्राह्मण हैं उनके मन और इंद्रियों पर पूरा वश रहता है। ये नहीं हम ब्राह्मण हैं और हम गोदासा इंद्रियों के दास बन रहे, तो नाम के ब्राह्मण नहीं, हमें असली ब्राह्मण बनना है। और असली ब्राह्मण के गुणों का वर्णन अनेक स्थानों में है, जैसे इस अध्याय में ही 9 श्लोक है जिसमें पितृगुणाज केवल एक ही विषय पर बल दे रहे हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव में क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, हम कैसे होने को चाहते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम इस चीज आपको समझें। तो पृथ्वीराज कह रहे हैं अगर तपस्या का पालन हो, वैदिक साधना निर्णय का स्वीकार किया जा रहा है और इंद्रियों और मन पर वश हो और भगवान पर चिंतन करे ध्यान दें, फिर जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी विषय की चर्चा प्रभा जी तात्पर्य में भी कर रहे हैं कि वैदिक शास्त्र का निर्णय क्या है, कृष्ण त्यो भगवान स्वयं ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंद सर्वकर्ण कर्णम। तो जो ब्राह्मण है वो वैदिक शास्त्र के निर्णय को स्वीकार करता है। वैदिक शास्त्र का निर्णय क्या है कि कृष्ण भगवान है परम भगवान। अर्जुन ने यही उपदेश दिया, आगे कहा सीधा देवा व्यास नरादा, इन सब का यही निर्णय है क्या कृष्ण भगवान जो है परम भगवान है। तो प्रभु जी तात्पर्य में कह रहे हैं जो भगवान का भक्त है वो असली ब्राह्मण है क्योंकि वो भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है और उसके का भाव क्या रहता है कि मैं सदा भगवान का गुणगान करूँ। तो यहाँ प्रभु जी तात्पर्य में कह रहे हैं 24 घंटे भगवान के नामों का ये कैसे सफल है, 24 घंटे हमें नौकरी करना है, ये करना है, ये करना है। तो भाव ये है तो जल्द से बचो, जप करो और जप कर, जब नहीं कर सकते क्योंकि आप भौतिक वातावरण में हो तो मन द्वारा जप कर सकते हो। ये नहीं कि आप मन द्वारा जप करो और जप नहीं करो, कहने का तात्पर्य यह है ऐसे कार्य करते रहना चाहे जो सदा भक्ति के लिए अनुकूल हो। जब प्रभा जी ने संस्था की स्थापना की थी, जब प्रभा जी ने पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में लगभग 50 साल पूर्व, जब प्रभा ने भक्तों का आदेश दिया था 64 मनाने में करने का, और भक्त ने प्रयास किया था 64 माला करने के लिए, नहीं कर पाए तो प्रभुपाद जी से आके कहा स्वामी इट्स वेरी डिफिकल्ट 64 माला करना, उन्हें वह केवल अमेरिकन सेशन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके डू 32 माला करो, 32 माला भी वो नहीं कर पाए। फिर प्रभुपाद जी का 16 नो लेस जो अगर हम 16वां ध्यान से करेंगे और ये संभव है अभ्यास से कर सकते हो, प्रयास करो ध्यान से करने का अर्थ है केवल जाप कर रहे हो, केवल जाप पर ही ध्यान दो, यदि जाप कर रहे हो 10 और कार्य कर रहे हो, अपराधों से बचने का प्रयास करो, तो फिर ये संभव है कि बाकी समय भी हम क्या भगवान का चिंतन कर पाओगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारी संस्था में हम चार प्रकार के अपराधों से बचते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आपकी संस्था में बहुत से बंधन है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। हमारे गुरु देखो कितने दयालु, पूरी छूट दी हुई। ये जो नियम है किसके लिए है, ये नियम है हमारे सुधार के, तो हमारे में पवित्रता प्राप्त हो, ये नियम है। अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करोगे और साथ में नियमों का पालन करेंगे तो बिना शंका के आप भगवान के नाम लौट सकोगे। तो असल में लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान की सेवा में जुड़े रहे। अगर आप 24 घंटे जुड़े रहोगे तो बिना शंका के भगवान के नाम लौट सकोगे। तो ब्राह्मणों और वैष्णव का होना समाज में अवश्य है, पर ब्राह्मण और वैष्णव में इन गुणों को भी अनुकूल, ये गुण भी प्राप्त होने चाहिए। और ऋतु प्रधान ने यह साबित किया है कि ब्राह्मण है और वैष्णव है समाज में खास स्थान है, उनमें जो ताकत है वो उसे वो है आध्यात्मिक शक्ति। तो ब्राह्मणों और वैष्णवों का वर्णन किया जा रहा है और भगवद गीता में भगवान क्या करें समो नमो तम सोच शांत कर ज्ञान अभिज्ञान मस्ते ज्ञान करना स्वभाव। तो ये ब्राह्मण के गुणों को अनुकूल करने की शक्ति कहाँ से आती है, भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा। अगर ध्यान पूर्वक जाप कर रहे, साधु संग में रहे, शास्त्रों का वगैरह अध्ययन करें, चार नियमों का पालन करें, बिना शंका के आप अपने हृदय को फिर बुला सकोगे। जैसे कहा गया है हरि नाम के उच्चारण का पहला लाभ क्या है, हमारे हृदय में जो बैल है काम दो मसले के रूप में इसको आप हो सकते हो दूर कर सकते हो। तो शास्त्र में हर प्रश्न का उत्तर है और हमें शास्त्रों का लाभ उठाना है। और जो ब्राह्मण और वैष्णव है उनके विषय में ये भी कहा गया है परम दुख दुखी, जब वो देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जुड़े हैं इंद्रिय भाव में तो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। ये जो प्रचार की सेवा है जिस पर इतना बल दिया जाता है, ये जो प्रचार की सेवा है किन के लिए है, ब्राह्मणों के लिए और वैष्णवों के लिए। जो ब्राह्मण वैष्णव है वो समाज के असली शुभचिंतक होते हैं, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे। तो वो ये भी जानते हैं कि असली सुख का चाहिए तो हमें भगवान के शरण होना चाहिए, इसलिए प्रचार की सेवा पर इतना बल दिया गया है। गीता के अंत में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, तुम्हें प्रचार करना है। तो जो ब्राह्मण और वैष्णव है उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से। जो तो जैसे भक्ति सिद्धांत जी कहते थे अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो क्या है, इस विज्ञान की कमी है। और जो वैष्णव ब्राह्मण है वो प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं इस कमी को दूर करने के लिए। ये जो ग्रंथों के विद्युत का मैराथन हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लोगों को सुधारना, शिक्षा दे रहे जिसके द्वारा भगवान के शरण अगत हो सके। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है उसी जन्म के जन्म हुआ है ना होगा। तो हर साल भगवान के आदेश के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार के सेवा पर बल दिया और उनके प्रतिनिधि आचार्यों ने भी इस विषय पर बल दिया और श्री प्रभुपाद जी ने बल दिया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो क्या करो, क्यों, क्योंकि इनका तो ज्ञान है और इस ज्ञान के उपयोग से हम जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे कि भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को कल रास्ते में चलते हुए जब देखता है क्या करता है, उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। फिर ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को ठीक रास्ते में जोड़ते हैं, ग्रंथ के माध्यम से लोगों को शिक्षा मिलती है क्या होना चाहिए गलत। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये सेवा में हम जुड़ते हैं क्योंकि हम सब बच्चियों को देखते देखना चाहते हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास सागर की कुटिया में गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाय नाथ ये बताओ कैसे इंद्रचल को या हम लोग का उद्धार होगा, मैं चिंता में हूं कैसे इंद्रचल ब्रह्म का उद्धार होगा। जिसके उत्तर में हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न कर यार, भगवान चिंता मत करो, हाँ राम बारी करें हम पास अपराध से रहे हरि नाम का जाप लेकर भगवान आपके शरणगत हो सकते, प्रजा आपके शरणगत हो सकती है। तो पृथ्वी महाराज की जो शिक्षा है इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। और पृथ्वी महाराज ने हमें ये उदाहरण भी दिया, जो राजा है जो नेता है उसे अपने उदाहरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट करना चाहिए और राजा की चिंता होनी चाहिए कैसे प्रजा का भी उद्धार हो। इसलिए जो वेदों में जो राजा थे उन्हें हम क्या कहते हैं, राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। और पृथ्वीराज के शासन के कारण प्रजा जो थी अत्यंत सुखी थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रजा को आदेश दिया क्या, क्या भक्ति योग का पालन करो, भगवान के देव देवताओं का उच्चारण करो, भगवान की सेवा में जुड़ो। और आज इस शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। मीना महाराज मीना के शासन में आपने देखा, क्योंकि राजा असुरी भाव का था, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के यज्ञ रुकवा दिए थे, समाज की प्रजा अत्यंत दुखी थी, आवश्यकता प्राप्ति हो रही थी, चल नहीं था कुछ, खाने पीने था कुछ नहीं। और पृथ्वीराज के शासन में क्या देखते हो, उन्होंने उपदेश दिया भगवान का, गुणगान करो, इसका ये परिणाम हुआ कि समाज की सब प्रक्रिया दूर हो गई और समाज की प्रजा अत्यंत सुखी थी। अगर आप भगवान की शरणागत हो गए क्योंकि शिक्षा के आधार पर चले गए, फिर आप असली सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। और पृथ्वीराज का जो उपदेश है ब्राह्मण के विषय में, ये हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और हमें इन गुणों को अनुकूल करना चाहिए अगर हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। और हमें इस ज्ञान क्या करना है, आगे भी बढ़ाना है। जो ब्राह्मण वैष्णव है खास करके प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं भगवान की क्या इच्छा है। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये सबसे उत्तम सेवा है, ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है ये सबसे उत्तम सेवा है, ये सेवा है ब्राह्मण के वैष्णव की, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव का एक ही भाव रहता है, सबको जोड़ा जाए भगवान की सेवा में। और हमारे में ये भाव होना चाहिए पूरे साल के लिए, ये कहानी रचिए, एक महीना गीता जयंती के उपलक्ष मैराथन करेंगे और बाकी 11 महीने कुछ और भाव और भाव होना चाहिए कि हम सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहे और अनेक प्रकार की सेवा में सबसे उत्तम सेवा क्या है। और भगवान जब देखते हैं कि मेरे भक्त पिछा के सेवा में जुड़े हैं, अगर उनमें कुछ कमी भी हो भगवान उसे दूर कर देते हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि प्रयास श्रद्धा से प्रयास करते हैं सेवा करने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं क्या करता हूँ, उनको देता हूँ। तो आप भक्तों से निवेदन है आप मैराथन कीजिए, ये है वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा और प्रचार करना एहसान है, एहसान नहीं भी है। अगर प्रयास करें तो प्रभुपाद और मानव छाया पर भगवान कठिन होकर हमें शक्ति देंगे, इसके द्वारा हम इस कार्य में जुड़ सकेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। For more information, please visit gkgoswami.com.